ओम शांति। मुरली के बारे में हर एक का प्रश्न होता है कि मुरली को कैसे पढ़े, मुरली पर चिंतन कैसे करें, है ना? तो आज हम मुरली के बारे में बात करेंगे कि मुरली को आखिर पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं। तो हमने कुछ 26 पॉइंट निकाले हैं हमारी मॉर्निंग क्लास में, हम सब ने मिलकर कुछ 26 पॉइंट्स निकाले थे कि मुरली को आखिर पढ़ना कैसे है। तो जो नोट कर सकते हैं वो नोट करेंगे और साथ ही साथ हम आज की मुरली को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला मेथड है वर्ड मेथड, शब्द विधि। वर्ड मेथड माना क्या? जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ओम शांति शब्द को उठा लिया और फिर उसको बाजू में लिख दिया। मुरली जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या क्या करना है ये हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो जैसे कि ओम शांति शब्द उठाया और उसको बाजू में लिख दिया, अब ओम शांति शब्द के बारे में हम और भी चिंतन कर सकते हैं कि ओम शांति क्यों बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी जी ओम शांति क्यों बोलते हैं, कब से यज्ञ में ओम शांति बोलना चालू हुआ, तो इन सब बातों में चिंतन कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम पूरी मुरली पढ़ते हैं तो शब्द मेथड, जो वर्ड मेथड है, उसमें से हर लाइन में से कोई ना कोई एक कैचिंग शब्द जो होता है उसको उठा के हम बाजू में लिख दे। फर्स्ट टाइम जब हम मुरली की रीडिंग करते हैं, जैसे आगे बाबा ने कभी कहा कि प्रभात के टाइम पे भक्ति करते हैं बहुत, है ना? तो प्रभात शब्द उठाया, प्रभात शब्द को साइड में लिख दिया। अब जब ऐसे हम करते जाएंगे, वर्ड को बाजू में लिखते जाएंगे, तो चार पेज की मुरली के बाद हमारे पास कुछ शब्द होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जब जगह होती है ना, उधर की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद उन शब्दों को याद करना है कि अच्छा, ओम शांति शब्द था, बलि चढ़ना शब्द था, जीवघात शब्द था, आज की मुरली के शब्द। जब हम शब्द याद करेंगे तो पूरा सेंटेंस हमको याद हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहला मेथड है वर्ड मेथड, शब्द विधि। सेकेंड मेथड है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड माने वाक्य विधि, पूरा के पूरा सेंटेंस को याद कर लेना। जैसे मुरली जैसे जैसे चलती है उस टाइम पर ही कुछ कुछ सेंटेंस लिखते जाना। चार पेज की मुरली तो हम लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन जब हम उसको पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे तो हमको याद रहेगी। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन हम ध्यान से करेंगे। तो मुरली पढ़ते टाइम पे सेंटेंसेस लिखते जाए, जो हमको अच्छे लग रहे हैं या जो हमारे दिल को छू रहे हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम सेंटेंसेस वाइज लिखते जाए मुरली के, है ना? तो जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, क्या क्या सेंटेंस याद है आप लोगों को? बीमारी खत्म होती है, हाँ बाबा ने कहा। पूरा पूरा वर्षा लेना है तो पूरा पूरा बलि चढ़ना है, है ना? एक बीमारी के बारे में पॉइंट हो गया, एक बलि चढ़ने के बारे में पॉइंट हो गया, ऐसे पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं। और फिर पूरे दिन में उस मुरली के सेंटेंसेस जो हमने लिखे, उस मुरली के पॉइंट्स को हमको रिवाइज करना है। पूरी चार पेज की मुरली हम कितने बार पढ़ेंगे, है ना? एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको बाजू में रख दिया और फिर जो पॉइंट्स हमारे पास है 10 पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को दोबारा बार बार रिवाइज करना। तो यह है सेंटेंस मेथड। तीसरा मेथड है जब हम मुरली पढ़ते हैं उस टाइम पर टॉपिक्स निकाले। तो थर्ड पॉइंट है टॉपिक मेथड, विषय। कोई भी विषय, मुरली का कोई भी विषय उठाइए और उसके ऊपर चिंतन करना चालू करिए। जैसे कहा ना कि बीमारी के टाइम पर बाहर वाले जो है वो बाबा ने कहा हाय हाय करते हैं, और तुम खुशी से, बाबा ने कहा तुमको खुशी से भोगना है, और अगर कोई भी भोग रहा है तो ऐसे देख के आश्चर्य नहीं करना है कि इसको भी होती है बीमारी, ये तो महारथी है, ये सारा चिंतन नहीं चलना चाहिए। तो इस टॉपिक को उठा लिया, तो ये एक टॉपिक हो गई। अब इस पे चिंतन करो, जैसे कर्म भोग है ना, ये हिसाब किताब चुक तू करो, तो इसके ऊपर कितनी सारी पॉइंट्स निकल सकती है। यज्ञ के उदाहरण हम दे सकते हैं इस पे। ऐसे सोचो उस टॉपिक पर जैसे कि आपको जाके क्लास करानी है उस पर, उस टॉपिक पर। ऐसे उस टॉपिक को निकालकर उस टॉपिक पर सोचना चालू करना है। तो जैसे कि अगर कर्म भोग हिसाब किताब के बारे में बाबा ने कहा, तो और हम क्या सोच सकते हैं? जैसे मम्मा के बारे में, अभी जैसे जून मास आ गया, सब मम्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मम्मा का उदाहरण है, मम्मा को एक बार बहुत तकलीफ हो रही थी, है ना, मम्मा को सीए ब्रेस्ट था और मम्मा को रात भर बहुत तकलीफ हुई, फिर जब सुबह हुई तब तकलीफ कम हुई। तो बहन जो मम्मा के बाजू में थी उसने मम्मा से कहा कि मम्मा आपको तकलीफ हो रही थी लेकिन आपने उफ भी नहीं की, आपने कुछ बोला भी नहीं, जबकि हमको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हमारा चेहरा ही बदल जाता है। तो मम्मा ने कहा ये दर्द ने मुझे बाबा से जोड़ कर रखा, इसने तो मेरे बाबा से समीपता बढ़ा दी, तो मुझे तो अच्छा लगा, इसने तो मेरी सहन शक्ति को बढ़ा दी। तो देखो बाबा भी आज कह रहा है ना कि खुशी से भोगना है। बाबा बच्चों को कहते थे कि अगर पेट दुख रहा है तो हमारा चेहरा चेंज हो जाता है, तो बाबा कहते हैं कि पेट दुख रहा है ना तो चेहरा क्यों चेंज हो रहा है हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि हिसाब किताब चुकटू हो रहे, अगर कोई बीमारी आई तो उसे खुशी खुशी भोगना है, ऐसे नहीं मुझे ही क्यों होता है ना। पापा ने ये भी कहा ना कुमारियों के बारे में, कुमारिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब किताब नहीं चुकतू होगे, हो सकता है ना, क्योंकि पिछले जन्मों का कुछ पापों का बोझा है तो हो सकता है। तो ये एक टॉपिक हुई, और ऐसी कौन सी टॉपिक है आज की मुरली से, जैसे वरदान से एक टॉपिक है, हाँ, उमंग उत्साह के पंखों को मजबूत करो, आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की जवाबदारी आप पर है, तो आपका आलस्य और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो अब हमने टॉपिक उठा ली आलस्य और अलबेलापन, अब आलस्य और अलबेलापन पे चिंतन करना चालू करना है। आलस्य और अलबेलापन कब आता है, क्यों आता है, इसको कैसे जीतना है ना। तो जैसे आलस्य अलबेलापन कब कब आता है, तो सबसे पहले जब मन को हम बिजी नहीं रखते, मन को जब हम ऐसे ही छोड़ देते है ना, मन को कोई काम नहीं दिया है तो मन भटकना चालू करता है, फिर कुछ कुछ सोचने लगता है, कहीं कहीं जाएगा, बुद्धि कहीं कहीं जाएगी, मोबाइल में जाएगी, टीवी में जाएगी, दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें जाएगी, व्हाट्सएप में जाएगी, है ना। कुछ नहीं तो पूरा दिन हमने कुछ लक्ष्य ही नहीं दिया उसको, तो सुबह में जब हम सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाते हैं और 5 बजे खत्म होती तो कब 5 बजे आते पता नहीं चलता, फिर 5 बजे के बाद हमको याद आता है कि हम ईश्वरीय संतान है, अभी हमको नुआशम का योग करना है ना। तो बीच बीच में अपनी बुद्धि को कुछ ना कुछ टाइम टेबल देना है, दिनचर्या को मॉर्निंग में ही सेट करना है, अमृत वेला के बाद ही दिनचर्या को सेट करना है, ताकि हम ये आलस्य और अलबेलेपन से दूर रहे। और क्या कारण होते हैं आलस्य और अलबेलापन आने के, जैसे कि दूसरों को देखने की आदत, जब हम दूसरों को देखते हैं तो क्या होता है, व्यर्थ आता है। कहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उस चीज की स्थिति हम पर आने लगती है, तो अगर हम किसी और को देखेंगे और अगर किसी और में व्यर्थ भरा है ना, तो वो सारा वेस्ट हम में आने लगेगा। तो दूसरों को देखना बंद करना है, तो जितना दूसरों को देखेंगे उतना आलस्य और अलबेलापन आएगा। अगर देखेंगे कि ये आत्मा भी नहीं कर रही है ज्ञान योग तो ठीक है ना, ये तो हमसे बहुत आगे है ज्ञान में, ये सब 10 साल से 20 साल से ज्ञान में है और ये तो नहीं कर रहे ज्ञान योग तो हम भी क्यों करें, तो ऐसे व्यर्थ आएगा और हमारा पुरुषार्थ कम हो जाएगा। तो दूसरों को देखने की आदत। तीसरा आलस्य अलबेला कम कब आता है, जब हम भोजन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये सबको एक्सपीरियंस होगा, जब भरपेट भोजन करके योग में आके बैठ के देखना योग लगता है क्या, लगता है योग। अगर रात को हमने बहुत ऑयली खाना खाया, बहुत सारा ज्यादा खा लिया कुछ अच्छा है तो, और फिर मॉर्निंग में अमृत वेला हमको उसकी सजा मिलती है कि हमको नींद आती है। फिर शाम को भी देखो, अगर कुछ अच्छा बनाए और हमने बहुत सारा खाया और हम नुमा शाम के योग के लिए आके बैठे तो फर्क होता है ना, जब हम लाइट भोजन करके आते हैं और हम जब वरिष्ठ भोजन और हैवी भोजन करके आते। तो भोजन भी एक ऐसी चीज है जिससे आलस्य और अलबेलापन आता है, तो अपने भोजन को बहुत बैलेंस रखना है। चौथा, नींद, जितनी ज्यादा नींद उतना ज्यादा आलस्य और अलबेलापन। हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो जब उनका ब्रेकफास्ट आ जाता है 8 बजे, अब क्या होता है वो 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारा राउंड चालू होता है 9 बजे, फिर हम पहुंचते हैं 10-10:30 बजे वार्ड में। तो जब हम 10-10:30 बजे पहुंचते हैं ना तो वो लोग सो रहे होते हैं, तो जैसे कि भोजन किया और बस नींद को पकड़ा, तो हम उनको कहते हैं कि बेड को अगर पकड़ेंगे तो बेड आपको पकड़ेगा, इसलिए बिस्तर को ना पकड़ो, जितना बिस्तर को पकड़ोगे बिस्तर आपको पकड़ेगा। तो सारे पेशेंट्स को चलाने के लिए बोलते हैं। तो उसी तरह से नींद, जितनी ज्यादा नींद करोगे उतना ज्यादा नींद आएगा, उतना ज्यादा आलस्य अलबेलापन। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, अमृत वेला जब उठते हैं तो कभी कभार बहुत आलस से आता है कि छोड़ो आज थोड़ा लेट उठते हैं, 5 मिनट के बाद अलार्म लगाते हम सब 5 मिनट के बाद, और 5 के बाद वो कभी 4:45 हो जाता है, पता नहीं चलता, 5 मिनट 4:45 को उठाता फिर हमको कभी कभी। तो एक बहन सुना रही थी, जैसे ही वो उठती है तो क्या करती है, अपनी रजाई को फोल्ड करके बेड के अंदर ही घुसा देती है ताकि कोई चांस ही ना हो। एक भाई सुना रहा था कि उठता है पूरे खटिया को ही ऊपर कर देते ताकि कोई चांस ही ना हो कि वापस है ना बेड पे जाके सोने का। और कई क्लासेस में सुना होगा कुमारों का अनुभव। एक कुमार ने क्या किया, अलार्म, उसको बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं अमृत वेला करूं, तो रोज अलार्म लगाता था और रोज अलार्म बंद कर देता था। तो उसने क्या किया, अलार्म को अपने, पता है, अलार्म को अपने बेड के नीचे रखा। अब देखो वो नींद का कितना महारथी था, उसने जब अलार्म बजा तो वो बेड के नीचे जाके वहां बंद करके वहां सो गया। तो आलस्य और अलबेलापन हमको कैसे घेरता है हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। जब बार बार जीवन में असफलता मिलती है, जब बार बार जीवन में हम फेल होते हैं, तभी भी ऐसा लगता है कि अभी छोड़ दो, अभी फिर अलबेलापन आने लगता है कि अरे मुझे तो सफलता ही नहीं मिल रही। लेकिन ये मार्ग ही ऐसा है कि अगर 100 बार गिरेंगे तो 100 बार उठकर चलना है हमको, मतलब हमको हार ही नहीं माननी है कि अगर जितनी बार गिरेंगे, ये रूल है, जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठकर चलना है हमको। और आलस्य अलबेलापन कम आता है जब नवीनता नहीं होती जीवन में, है ना। जब नवीनता ही नहीं है तो जीवन में आलस्य आएगा। जैसे अभी रोज की मुरली है, अब तक हम रोज की मुरली पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ते और जैसे हमारा काम खत्म करते हम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि 4 पेज की मुरली बस, क्योंकि पढ़ना है, श्रीमत है, सुनना है, पढ़ना है, तो तुरंत पढ़ लेते और उसको खत्म करते, तो वैसे नहीं करना है। तो आज जब हम 26 पॉइंट्स ये गिनाएंगे तो कल से जब आप लोग मुरली पढ़ेंगे तो आपको उमंग उत्साह में पढ़ना है मुरली। तो ये कुछ टॉपिक मेथड है मुरली से, थर्ड हमने कहा टॉपिक मेथड। फोर्थ विधि है मुरली पढ़ने की, टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, ड्रिल की विधि। जब हम मुरली सुनते हैं या मुरली पढ़ते हैं तो पूरी मुरली को उसको योग में परिवर्तन करना है, उसको ड्रिल में परिवर्तन करना है। जैसे संडे की मुरली थी, कमलेश भाई जी हमारे हैं, उन्होंने सारी 4 पेज की मुरली को ड्रिल बना दी, एक 10 मिनट 7 मिनट की। तो अब जब हम खुद उस मुरली पर मेहनत करते और उसको ड्रिल बनाते तो हमारे पास एक नवीनता होती है ना। जब हम योग में बैठते हमेशा वही नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमधाम चली, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति की किरणें आई, जब बार बार ये करते तो आलस्य आता है। तो कुछ नवीनता लाने के लिए मुरली के ही शब्दों को उठा के मुरली को ही पूरा ड्रिल में परिवर्तन करना। तो कभी मुरली पढ़ते पढ़ते ये मेथड यूज करना कि आज मुरली पढ़ने के टाइम पे मैं इसको एक ड्रिल में परिवर्तन करूंगी। फिर 5वां मेथड है विजुलाइजेशन मेथड। अभी विजुलाइजेशन मेथड क्या, मानस दर्शन विधि। जैसे कि बाबा ने आज बात की सत्युग के बारे में, है ना। तो जब बाबा सत्युग के बारे में बात कर रहा है तो सत्युग को विजुलाइज करो। सत्युग में महल है, राजा रानी है ना, प्रजा है, राज्य दरबार लगी हुई है, पंछी है, झरने हैं, फूल है, बगीचे हैं। तो सत्युग के बारे में जैसे बाबा ने आज कहा, हनुमान को भी याद किया ना कि जो हनुमान को याद करते तो उसको हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। तो अब अपने आप को ही देखो हनुमान के रूप में, विजुलाइज करो हनुमान, मैं हनुमान मंदिर में, है ना, मेरे सामने सारे भक्त खड़े हैं। ऐसे विजुलाइजेशन मेथड, जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरी मुरली को विजुलाइज करते जाना, विजुलाइज करते जाना। 6वीं विधि है आंसर चर्निंग मेथड, उत्तर मंथन विधि। अभी जैसे कि आज का प्रश्न, मुरली का जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं हम तुरंत उत्तर नहीं पढ़ना है ना। सेंटर्स पे आपने देखा होगा बहने क्या करते हैं, मैंने उत्तर नहीं देते, क्वेश्चन पूछते हैं और उत्तर सबको पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन पढ़ के। तो वही अपने आप करना है आप लोगों ने। जब मुरली हम पढ़ते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो और अभी उत्तर निकालो उसके 10, पहले उसके 10 उत्तर खुद निकालो, फिर छुपा दो, पहले 10 उत्तर खुद निकालो फिर देखो कि बाबा ने क्या बोला। जैसे कि आज की मुरली का प्रश्न है फर्स्ट, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो बोलो क्या क्या उत्तर आएंगे इसके लिए, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। परमात्मा, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इस गुह्य बात को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए। और ड्रामा का ज्ञान समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, ड्रामा के राज को समझने के लिए, खुद को समझने के, नहीं कौन सी ऐसी गुह्य बात को समझने के लिए। हाँ ये एक बड़ा अच्छा है कि ब्रह्मा तन में भगवान आता है, इस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, है ना। तो कितने सारे प्रश्न निकले, और कोई बोलो पीछे से। हाँ ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये कैसे, त्रिकालदर्शी बुद्धि के लिए, त्रिकालदर्शी ज्ञान जो है उसको समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गुह्य बात क्या है उसमें, हाँ बाब, हाँ तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे अभी सेकंड प्रश्न हम आपको पूछते हैं, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो। हाँ ये तो आज की मुरली से उत्तर है ना, उसके अलावा हमको बोलना है। हाँ ये है ना विनाश, कितना सूट हो रहा है देखो ये आंसर, विनाश में वो लोग हाय हाय करते हैं और हम खुश होते हैं कि विनाश होने वाला है ना, हमारे ऊपर ये कलंक है ना एक कि है ना ब्रह्मा कुमारी विनाश के बारे में बात करती है ज्यादा। किसी का हार्ट फेल होता है। दुनिया में हाय हाय, हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हम नया चोला लेंगे और वो लोग मृत्यु के बाद हाय हाय करते, तो ये भी एक पॉइंट है। कहाँ जाएंगे, हाँ कौन सी यूनि में जाएंगे, 84 लाख की यूनि की, तो वो हाय हाय करते है रेडी मर्द, प्राकृतिक आपदाएं आता है तो वो हाय हाय करते और हम खुश होते। तो ये है आंसर चर्निंग मेथड। तो क्या करना है, कल अगर कभी कोई मुरली पढ़े तो इसमें से कोई भी एक दो मेथड उठाना कि प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर नहीं देखेंगे, उत्तर पहले हम 10 निकालेंगे, इसी को चिंतन बोलते हैं, तो और फिर चिंतन करके 10 उत्तर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि बाबा का उत्तर क्या है। कभी कभार हमारा मैच हो जाएगा, बाबा का उत्तर और हमारा उत्तर सेम होगा, है ना, अभी भी जैसे कितने सेम निकलते हैं। फिर है क्वेश्चन मेथड, पूरी मुरली पढ़ते टाइम पर क्वेश्चन निकालते जाना, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या बोलेंगे अभी, हम आत्मा का स्वधर्म क्या है, है ना। तो ये पढ़ा, मुरली पढ़ते गए और उसका क्वेश्चन निकालते गए, क्वेश्चन आंसर, पूरी 4 पेज की मुरली से 10 क्वेश्चन और आंसर भी आपने निकाले तो आपको 10 महावाक्य याद हो जाएंगे बाबा के। तो क्वेश्चन आंसर मेथड, पूरी मुरली को क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत बार देखा होगा सीजन की जितनी भी मुरली होती है उसके क्वेश्चन आंसर ईमेल्स पे जाते हैं, यहाँ पर साकार मुरली पर भी वो करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत सारे ग्रुप्स में भी है ना, रोज क्वेश्चंस जाते हैं, क्विज होता है ना, और फिर उसके आंसर्स लिखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर मेथड, उससे भी हमको मुरली याद होती जाएगी। फिर है ऑडियो मेथड, है ना, ऑडियो मतलब सुनना, अभी तो सबके व्हाट्सएप पे, सबके ईमेल पे, मोबाइल्स पे आ जाता है ऑडियो, तो मुरली पढ़ना भी और मुरली सुनना भी, मुरली सुनेंगे भी तो याद रहेगा। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको मुरली पढ़ने से याद नहीं होता लेकिन मुरली सुनने से याद हो जाता है, तो मुरली सुनना, ये है ऑडियो मेथड। आज के दिन मैं क्या करूंगी, आज के दिन मैं मुरली पढ़ूंगी भी और मैं मुरली सुनूंगी भी। हम यहाँ पे देखते बहुत सारे भाई बहन नक्की पे जाते तो मुरली सुनते हुए जाते, टाइम वेस्ट नहीं होता है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, मुरली सुनते हुए जाएंगे, कभी तैयार होते रहेंगे मुरली सुनेंगे, कभी उनके डिपार्टमेंट में जाओ मुरली की आवाज आएगी, तो ऑडियो मेथड। 9th पॉइंट है स्टॉप इन बिटवीन मेथड, बीच बीच में रुकने की विधि, अभी बीच बीच में रुकने की विधि, जैसे कि आज का महावाक्य क्या है, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना, है ना। बस अब रुक जाओ इधर ही, पूरा मुरली नहीं पढ़ा हमने अभी तक, हमने सिर्फ महावाक्य पढ़ा, बीच बीच में रुकने वाली विधि यूज कर रहे हैं आज का दिन, तो इधर ही स्टॉप, अब चिंतन चालू करो अपना, बलि चढ़ना, अभी बलि क्या है, है ना, बाहर कौन कौन बलि चढ़ाते हैं, किस किस चीज की बलि चढ़ती है बाहर, है ना, तो फिर बकरी की चढ़ती है और बाहर गाय की बलि चढ़ती है, लोगों की भी बलि चढ़ती है ना, सूक्ष्म रूप में किस किस चीज की बलि चढ़ती है, बाबा ने बलि चढ़ने को का अर्थ क्या कहा है, पांच विकारों का दान दो, उसकी बलि चढ़ा दो, तो ये सारी चीजों पर चिंतन करना है। सिर्फ एक महावाक्य पढ़ा और उसके बारे में कितनी सारी पॉइंट्स निकली, और लिखना चालू करना। जब भी हम लिखते हैं ना पॉइंट वाइज, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, तो लिखना चालू करना। सिर्फ महावाक्य पे देखो आप सबने कितने पॉइंट्स बोले। तो ये हुआ स्टॉप इन बिटवीन मेथड। दसवां मेथड है रीडिंग अलाउड, उच्च स्वर में पढ़ने की विधि। कभी कभार हम मुरली लेके अपने आप में पढ़ते हैं ना, लेकिन बच्चों को देखा है जब वो लोग पढ़ते हैं तो कैसे जोर जोर से पढ़ते हैं, तो वो जोर जोर से जब पढ़ते हैं क्यों, उनको याद रहता है। तो हाँ, तो ऊंचे स्वर में कभी कभार मुरली को पढ़ना लेना, और अकेले बैठना, कहीं सबको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने कहा तो लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ेंगे या कहीं पर भी, ऐसे नहीं। जैसे आंगन में आप लोग देखते होंगे सुबह में ग्रुप बैठा रहता है दो तीन का, उस स्वर में पढ़ते हैं ना मुरली। आहिस्ते आहिस्ते भी अपने मोबाइल को देख के वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते हैं क्यों, उनको याद रहता है मोबाइल पर, या उच्च स्वर में पढ़ने से उनको याद रहता है, तो उस हिसाब से वो पढ़ते हैं। तो रीडिंग अलाउड मेथड। इलेवेंथ है नेम मेथड, नाम विधि। नाम विधि माना, जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने सत्युग के बारे में क्या कहा, तो सत्युग के और कौन से नाम लिए बाबा ने, तो जैसे वैकुंठ बोलता है कभी, हेवन बोलता है, पैराडाइज, सुखधाम, स्वर्ग, है ना, और अलग अलग तरह के। आज स्वर्ग के बारे में क्या क्या नाम दिए, आज ब्रह्मा बाबा को कौन से नाम दिए बाबा ने, कभी कहता है ये पोस्ट ऑफिस है, ये तो मेरी पत्नी है ना, लॉन्ग बूट है, तो ऐसे मुरली को याद रखने की कोशिश करना। आज बाबा ने हम लोगों को क्या टाइटल दिए, अलग अलग क्या टाइटल दिया आज, हम कौन है, हम कौन है, हाँ हम है सेल्वेशन आर्मी, और हम है गॉड फादरली स्टूडेंट्स, है ना। तो ये नेम, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या दिए, आज की मुरली मैंने पढ़ी, बाबा ने मुझे आज ये नाम दिए, तो ये है नेम मेथड। बारवा पॉइंट है एक्सपीरियंस मेथड। अभी एक्सपीरियंस माना कि अनुभव, अनुभव विधि। कोई भी एक पॉइंट को पढ़कर उस चीज पर अनुभव करना, कि जैसे बाबा ने वरदान में कहा ना, उमंग उत्साह के पंखों को मजबूत करो, है ना, और आपके ऊपर विश्व की जवाबदारी है। अब विश्व की जवाबदारी है, क्यों बाबा ने ऐसे कहा, मैं कौन हूँ, मैं पूर्वज हूँ, है ना, मैं एंसेस्टर हूँ, तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं तो बीज हूँ, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो एक ही कोई पॉइंट को पढ़ना और फिर उस पॉइंट पर चिंतन कहा, जैसे बाबा ने आज कहा मुरलीमल कि खुशी से भोगना है ना। अभी खुशी से भोगना है, इसका ये क्या है भाई, भोगना भी है और वो भी खुशी से, तो इसका मतलब क्या, इस चीज को एक्सपीरियंस करना। जितना हम पॉइंट्स को अनुभव करते जाएंगे उतना वो हमारी पट बनती जाएंगी, और फिर हम उसको परिस्थितियों में यूज करेंगे। जैसे ड्रामा के बारे में भी कहा ना बाबा ने, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। तो अब ड्रामा बोल दिया बाबा ने, तो एक्सपीरियंस करो कि ड्रामा, अच्छा जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, तो मेरे लाइफ में ऐसा क्या क्या घटा है जिसको मुझे भूलना है, जिसको मुझे माफ करना है, ड्रामा के और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, तो ड्रामा के बारे में आपका चिंतन हो जाएगा, है ना। ड्रामा के बारे में तो बाबा ने क्या क्या बोला है, स्पार्क में ऐसी छोटी सी बुक भी है जिसपे सब कुछ लिखा है, बाबा के महावाक्य ड्रामा पे बाबा ने क्या क्या बोला है। तो अनुभव की विधि, हर चीज के पॉइंट का अनुभव करना, जो भी बाबा ने मुरली में कहा, जो भी आपके दिल को छू रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट, उस पॉइंट पर रुक जाना, उसको अनुभव करना, फिर आगे पढ़ना। ऐसा नहीं कि पूरी मुरली चार पेज की खत्म करनी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मेथड। 13 है मेंटल मूवी मेथड, मानसिक चल चरित्र विधि। एक हुआ विजुअलाइजेशन मेथड, हमने देखा कि सत्युग है ना, सत्युग को देखा या द्वापर युग को देखा। अब मेंटल मूवी मेथड में, जैसे कि मूवी चल रही है हमारे सामने, अब कैसे देखेंगे मूवी चल रही है सामने, जैसे अगर हम, बाबा ने आज सत्युग के बारे में बहुत कुछ बोला, तो मैं सत्युग में अभी मैं अपने आप को देखूं, मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, है ना, और मैं राज्य दरबार लगी हुई है, या तो एक ऐसा सीन देखे कि मैं कृष्ण के साथ खेल रहा हूँ, मैं भी उसके साथ एक नन्ना सा बच्चा, दास दासी मेरे पीछे आ रही है ना, हमको कुछ खिला रही है, हम फूलों के बगीचे में खेल रहे हैं। ऐसा कुछ देखो कि हम पुष्पक विमान में बैठे हैं और पुष्पक विमान उड़ाकर कहीं हमको लेके जा रहा है, तो ये देखे। जैसे बाबा ने हनुमान के बारे में कहा, तो क्या देखेंगे, पूरा सीन देखो। हनुमान के मंदिर में तो गए होंगे ना, तो क्या क्या होता है आपको पता होगा। तो हनुमान खड़ा है, मैं हनुमान, वो स्वमान ले लो और देखो कि मंदिर में एक एक भक्त आत्माएं मेरे सामने आ रही है, कुछ मांग रही है मुझसे, और कैसे मैं उनके विघ्नों को दूर कर रहा हूँ, कैसे मैं उनमें शक्तियां भर रहा हूँ, एक एक को। ठीक है, जैसे कभी बाबा ने दुर्गा के बारे में बात कर ली, अगर तो मैं दुर्गा हूँ, मंदिर में खड़ी हूँ, एक भक्त आया उसको मैंने वरदान दिया, किसी ने मेरी आरती की, अचानक से एक फूल गिरा, ऐसे कुछ देखना है। तो कुछ नवीनता आएगी हमारे योग में भी और हमारे पढ़ाई में भी, है ना। तो ये है मेंटल मूवी मेथड। 14वां पॉइंट है एग्जाम्पल मेथड, उदाहरण की विधि। जैसे कई बार बाबा उदाहरण से एक्सप्लेन करते हैं हमको, हर चीज के लिए बाबा उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे कि सांप का उदाहरण देते हैं, तो कहते हैं कि ये उसकी खाल निकल जाती है, तो ये आत्मा है जो ये शरीर छोड़े, है ना। और जैसे कछुए का उदाहरण देते हैं, जैसे लास्ट संडे की मरली में बाबा हमसे एक्सप्लेन कर रहे त्यागी तपस्वी देहभान को छोड़ने की, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि तुम ये दुनिया में मेहमान हो, तो मेहमान की क्वालिटीज क्या होती है, है ना। तो मेहमान का एग्जाम्पल दिया। कहीं बाबा ने फूटे हुए बर्तन का एग्जाम्पल दिया संडे की मुरली में, और अगर वो बर्तन रह जाते पानी जमा होता है तो कौन आता है, मच्छर आते हैं। तो ऐसे बाबा उदाहरण के तौर पर एक्सप्लेन करते। तो आज की मुरली में बाबा ने कौन से एग्जाम्पल्स दिए, तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने बलि चढ़ने के बारे में कहा, जीव घात के बारे में कहा, तो ये सब एग्जाम्पल्स दे रहे बाबा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से बाबा एक्सप्लेन कर रहे। तो वो आज की मुरली में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है, उस तरह से मुरली को याद रखने की कोशिश करना। तो ये हुआ एग्जाम्पल मेथड। 15 है सेल्फ चेकिंग मेथड, निरीक्षण विधि, सेल्फ चेकिंग, अपने आप को चेक करना। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना पोता मेल के बारे में, क्या कहा, बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। कई बच्चे जो पोता मेल नहीं देते, भूल जाते, तो फिर अब ये पॉइंट पढ़ने के बाद सोचना है, पढ़ के आगे नहीं जाना है ना। हमने से बहुत लोग ऐसे हैं जो पोता मेल देते हैं फिर बंद कर देते हैं, और कोई तो देते ही नहीं है। तो पोता मेल पे बाबा ने जब बोला, तो चेक करो कि मैं बाबा को पोता मेल देती हूँ रोज, और मैं पोता मेल में क्या करती हूँ रोज, क्या देती हूँ पोता मेल में। जैसे उस दिन चर्चा हो रही थी कि पोता मेल, जैसे हमारी शाम को ड्यूटी खत्म हो जाती है, सेवा खत्म हो जाती है, जब हम योग में जाके बैठते हैं, तो 5 मिनट बाबा को अपनी पूरी दिनचर्या सुनाओ, उससे बात करो, उससे रूहानी करो कि आज बाबा ये हुआ, आज मैंने ये किया। तो ये जैसे कि एक पोता मेल देना हुआ, और रात को हम एक और पोता मेल देंगे बाबा को, लेकिन शाम को भी हम एक पोता मिल दे बाबा को कि आज मैंने ये किया। हमारा पिता है ना, वो हमारा फ्रेंड है, तो हमको बातें करनी है। अगर योग में आप डायरेक्ट जाके बैठेंगे और बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी, तो नहीं लगता है योग। लेकिन अगर आप जाके थोड़ा सा रूहानी करो, या कुछ चिंतन करो 5 मिनट, या बाबा से बात करो, और फिर योग करने की कोशिश करो, तो देखो योग कैसे लगता है। तो वैसे ही हर पॉइंट पे बाबा बोल रहे चेकिंग करना, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्मा का स्वधर्म है शांत, तो क्या मैं शांत स्वरूप हूँ, आज बाबा ने तो बोल दिया। कल उस दिन बाबा ने बोला था शांति तुम्हारे गले का हार है, तो क्या मैं शांत रहती हूँ। तो उस पॉइंट पर अपनी चेकिंग करना, कोई भी धारणा की पॉइंट मुरली में आती है उस पॉइंट को फिर चेक करना। जैसे बाबा कभी कहते कि तुमको क्रोध नहीं करना है, है ना, क्रोध बहुत गंदी चीज है, तो कितना है क्रोध मेरे में, अपनी चेकिंग खुद। तो ये हुआ सेल्फ चेकिंग मेथड, मुरली पढ़ते पढ़ते ही चेक करना कि मुझ में क्या है, मुझ में क्या नहीं है। जो बाबा ने कहा अगर मुझ में नहीं है, तो मुझे वो करके दिखाना है फिर। तो ये हुआ सेल्फ चेकिंग मेथड। फिर 16वां है 16th पॉइंट रिलेशनशिप मेथड, संबंधों से। आज बाबा ने कौन से संबंधों से मुरली चलाई। जैसे बाबा ने कहा तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तो जैसे कि वो हमारा टीचर हो गया। उसने कहा हमको तुम सेल्वेशन आर्मी हो, तो वो चीफ कमांडो हो गया, है ना। तो ऐसे बाबा ने कौन सी चीज, ऐसी क्या संबंध से बाबा ने आज मुरली चलाई। तो आज मैं दादा से ही वर्षा मिलता, तो दादा, तो ऐसे बाबा कौन से संबंधों से हमको याद कर रहा है, उस संबंधों को उठाओ मुरली से, पिकअप करो कि आज ये संबंध से याद किया बाबा ने। फिर दिन भर में हम उसको उसकी फिर मंथन कर सकते हैं। तो ये हुआ रिलेशनशिप मेथड। 17 पॉइंट है, फोर सब्जेक्ट्स मेथड, चार विषय विधि। ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा है करते हुए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। बहुत लोग करते भी होंगे, यहाँ पे चार कॉलम्स बना के, बाबा ने आज ज्ञान की क्या पॉइंट बोली, योग की क्या पॉइंट बोली, धारणा की क्या पॉइंट बोली, सेवा की क्या पॉइंट बोली, है ना। धारणा तो राजू भाई जी हमारे लिए इजी कर देते क्योंकि दो धारणा के पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास होते, पर ऐसी और कौन सी पॉइंट्स है मुरली में जो धारणा की पॉइंट्स है। तो धारणा, योग की कौन सी पॉइंट है, सेवा की कौन सी पॉइंट है और ज्ञान की कौन सी पॉइंट है। तो चार सब्जेक्ट की विधि के आज हम मुरली पढ़ेंगे, तो चार सब्जेक्ट की विधि को ध्यान में रखते हुए मुरली को पढ़ेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ऐसे फिर मुरली याद रहेगी। 18th है स्पिरिचुअल टूर मेथड, आध्यात्मिक भ्रमण विधि। जैसे कि इसमें भी विजुअलाइजेशन और मेंटल मूवी मेथड जैसे ही है कि एक चीज को विजुअलाइज करना, उसके बारे में सोचना, फिर दूसरी चीज को सोचना। फिर 19th पॉइंट है हाईलाइट अंडरलाइन मेथड। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोग मुरली को अंडरलाइन करते हैं या मार्कर पेन से पूरा उसको कलर कर देते, जैसे कि किसी किसी का मुरली तो जैसे लगता है पेंट में डुबा के निकाला हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे उनको याद रहता है। आप डबल फॉरेनर्स को देखेंगे, वो लोग मुरली को अंडरलाइन करते हैं, कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग मेथड भी होता है, जैसे कि ड्रॉ कर लेंगे मुरली को एक चित्र के रूप में चेंज कर देंगे तो वो याद रहता है, या एक सर्कल बना देंगे और उसको एरोज बनाएंगे और फिर उसको हाईलाइट करेंगे कि आज की मुरली का मेन विषय ये है और इसके ये सब ग्रुप्स है, तो उस हिसाब से मुरली याद रहेगी। तो हाईलाइट मेथड। 20th पॉइंट है एक्सट्रैक्टिंग न्यू धारणा पॉइंट्स। आज की मुरली में ऐसी कौन सी धारणा पॉइंट्स थी जो मेरे दिल को छू रही है, जो मुझे अच्छी लग रही है, है ना। आज ऐसी कौन सी चीज है मुरली में जो मैं अपने जीवन में धारण करूंगी। तो आज की मुरली में क्या धारणा की पॉइंट लगी, जितना जास्ती याद करेंगे उतना निरोगी बनेंगे, याद से ही तुम निरोगी बनेंगे, है ना। तो ये पॉइंट ले ली हमने, तो निरोगी की पॉइंट हो गई। और हाँ, वरदान में भी विश्व की जवाबदारी वाला पॉइंट, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। और कोई पॉइंट्स, याद से आयु बढ़ती है, याद से निरोगी बनते हैं, सारा दिन ओम शांति नहीं करना है तो हाँ जी, बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है ना। हाँ, बाप के संग में रंगेंगे तो बुराइयां समाप्त हो जाएगी, है ना आज का स्लोगन। तो ये धारणा पॉइंट थी इनके लिए, किसी के लिए कुछ और थी, किसी के लिए ओम शांति बोलना बंद करो, तो जो बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे तो उनके लिए धारणा पॉइंट है आज की। तो ऐसी कौन सी धारणा की पॉइंट, चार पेज की जब मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मुझे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्राह्मण जीवन में। हम बहुत क्लासेस सुनते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी मुझे क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो चार पेज पढ़ो या 10 पेज पढ़ो या 1 पेज पढ़ो, कुछ नहीं होगा। मुझे क्या करना है ये देखना है कि ये बोल दिया बाबा ने, बलि चढ़ने पर बोल दिया, अब मुझे क्या करना है ये पॉइंट को लेकर, है ना। मैं क्या करूंगी अपने पुरुषार्थ में कि मैं आगे बढ़ूं। तो ये हुआ एक्सट्रैक्टिंग न्यू धारणा पॉइंट्स। फिर 21st पॉइंट है मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड, मुरली निजीकरण विधि। ऐसी कौन सी पॉइंट मुरली की मुझे अच्छी लगी जो मैं समझती हूँ कि ये मैं अपने अभी पुरुषार्थ में इसको यूज करूंगी, पर्सनली मैं इसको यूज करूंगी। जैसे आज की मुरली में हमको बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि खुशी से भोगना है ना, क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं, तो हमारे लिए ये पॉइंट बहुत कैची थी कि खुशी से भोगना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुश रहना है। तो क्या करेंगे हम बीमारी के टाइम पे, अब इस पे चिंतन करना पड़ेगा ना, चिंतन करेंगे तभी उस पॉइंट को हम यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, खुशी से भोगना है तो क्या सोचेंगे, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, भोगते जा रहे और श्रेष्ठ स्वरूप देवी देवता का वो बनता जा रहा है हमारा, चुक तो करके ही परमधाम जा सकते, इसलिए खुशी से भोगो। बाप मेरा साथी है, आप जगदीश भाई जी को जानते होंगे, जगदीश भाई जी जब बीमार थे तो लास्ट में उनका ऐसे आवाज निकलता था, हो ऐसे आप कोमा में जैसे थे वो, तो उनसे पूछते थे भाई जी क्या हुआ, तो बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो कैसे बीमारी के समय भी अभी और बहुत सारी विधि उन्होंने बताई थी कि कैसे हम अपने आप को है ना ज्ञान योग से जोड़कर रखे बीमारी के टाइम पर भी। जैसे कि अगर किसी का सिर दर्द बहुत हो रहा है तो वो क्या सोचे कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, है ना, बाबा ने डबल ताज मेरे सिर पर रखा है। जैसे किसी की आंखें खराब है, किसी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है तो क्या देखे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, है ना, बाबा ने मेरी आंखों का ऑपरेशन किया है, एक आंख में सुखधाम एक आंख में शांति धाम, है ना, और हाँ चक्कर आ रहे तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, बहुत अच्छा। और तो देखो ऐसे रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे ना तो खुशी खुशी पे होगा, वरना सब लेके ही बैठेंगे। अगर किसी के पैर दर्द हो रहे तो बाबा ने मुझे जवाबदारी दी है ना, सारी विश्व की जवाबदारी मेरे पैरों पर है या मेरे कंधों पर है, अगर किसी के कंधे दुख रहे हैं तो ऐसे अलग अलग तरह से हम अपनी बीमारी में भी खुशी से भोग सकते हैं उस भोगना को, है ना। तो ये हो गया मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड। अगर हमने आज इस पे चिंतन कर लिया तो कल जब हमको कोई बीमारी होगी तो हमको इतना फील नहीं होगा, ठीक है हो गया, हो जाएगा ठीक। फिर है स्टोरी मेथड, कहानी विधि। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी स्टोरीज बोली, है ना, कोई कोई स्टोरी बोलता है ना बाबा, जैसे तीजरी की कथा और स्वप्न का, हा? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा। अब ये सब सबको ये कथाएं नहीं पता होगी, लेकिन जब बाबा ने बोला और हमको हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है बट मुरली पर ही ध्यान रखना है, तो जाओ और उसको सर्च करो कि क्या है इस मुरली में, इस कहानी में, और ये कहानी को बाबा हमसे कैसे जोड़ रहे हैं। जैसे आज की मुरली में पॉइंट है कृष्ण सावरा, कृष्ण को भी सावरा बताते, तो बहन जी ने मॉर्निंग क्लास में बताई ना स्टोरी कि वो नीचे गया पानी में बॉल खेलते खेलते सांप ने डस लिया और फिर वो सावरा बन गया, तो है ना कैसे मुरली को कहानी से कनेक्ट किया, तो ये हुआ स्टोरी मेथड। तो आज की मुरली में ऐसी कौन सी, जब हम ऐसे याद रखेंगे तो हमको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, स्टोरी मेथड। फिर है कॉन्ट्रास्ट मेथड, परस्पर तुलना की विधि। जैसे कभी कभार बाबा संन्यास के बारे में बात करता है ना, आपका है बेहद का संन्यास और वो संसारी लोग कैसे संन्यास करते, हद का संन्यास। तो कॉन्ट्रास्ट मेथड, कौन से मुरली में आज पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स है। जैसे कि कलयुग के बारे में बात करता है, सत्युग के बारे में बात करता है, तो बहुत बार अच्छी अच्छी पॉइंट्स आएगी, हाँ, हट योग और राजयोग, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे जिसमें हमको कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करना है। फिर 24th है मेमोराइजेशन मेथड, मेमोराइजेशन मेथड भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आज का वरदान ले लिया, वरदान को पूरा लाइन टू लाइन याद करना, जब हम मेमोराइजेशन मेथड यूज करते हैं ना तो हमारी बुद्धि बहुत एकाग्र हो जाती है। अगर हम किसी चीज को याद करने में लग गए तो बहुत बुद्धि, बच्चे क्यों इतने इनोसेंट है और इतने है ना विकारों से दूर है, क्योंकि वो याद करते हैं ना अपना लेसन याद करते हैं वो लोग, और हम पढ़ के छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं, याद करोगे ना तो बुद्धि एकाग्र होगी। तो आज मुरली की 5 पॉइंट्स मैं याद करूंगी या आज मुरली का प्रश्न उत्तर मैं वैसे के वैसे याद करूंगी। हम देखते हैं कि बहुत लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं ना बहुत लोग, लेकिन फिर बंद करके नेक्स्ट डे खोलते हैं उसको। तो अच्छा है चलो मुरली का प्रश्न उत्तर ही लिखो, लेकिन फिर उसको याद करो, दिन भर में बैठो और 10 मिनट भी याद करो, और 10 मिनट भी अगर एकाग्र हुई ना बुद्धि तो नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स फिर बुद्धि बहुत एकाग्र रहेगी। तो मेमोराइजेशन मेथड, और उसमें मजा भी आएगी, जब याद करेंगे तब तो लाएंगे उसको कर्म में, अगर हम याद ही नहीं करेंगे तो कर्म में कैसे लाएंगे। जैसे आज हम ये मुरली की रिविजन कर रहे हैं, अब रिविजन कर रहे हैं तो याद रहेगा, अभी आपको 2-3 दिन याद रहेगा, ये आप भूलेंगे नहीं, अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो और टाइम तक याद रहेगा। जैसे अभी ये खुशी से भोगना की पॉइंट, अगर मैं इसको रोज याद करूं तो ये मेरे अवचेतन मन में चले जाएगी ये पॉइंट, नहीं तो नहीं। तो मेमोराइजेशन मेथड। फिर 25वां है बिजार मेथड, बिजार मेथड यानी कि अनोखी विधि। कभी कभार मुरली पढ़ते पढ़ते कंटाल आता है कि अरे बापरे अभी चालू किया, अभी 4 पेज खत्म करने, तो क्या करो मुरली को पीछे से पढ़ना चालू करो। कभी कभार मुरली का कोई भी बीच का पैराग्राफ पहले पढ़ लो, या नीचे का पैराग्राफ पहले पढ़ लो, फिर फोर्थ पैराग्राफ पढ़ो, फिर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, फिर सेकंड पैराग्राफ, तो ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा और फिर मुरली को हमको पढ़ने में मजा आएगी। तो बिजार मेथड है ना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम कर सकते साकार मुरली में, लेकिन अव्यक्त में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अव्यक्त मुरली कनेक्टेड है, साकार मुरली नो कनेक्शन। तो पढ़ सकते बिजार मेथड, कभी नीचे से चालू करो, कभी धारणा से चालू करो, कभी वरदान से चालू करो, कभी प्रश्न उत्तर से चालू करो और फिर लास्ट में आ जाओ, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, है ना, पत्र है बाबा का, पढ़ो कैसे भी पढ़ना है। तो बिजार मेथड, और लास्ट है 26th पॉइंट, कैची वर्जन्स मेथड, आकर्षक कथन विधि। ऐसे कौन से कैची पॉइंट्स लगे आज मुरली के मुझे? बाबा ने आज मुरली में कहा है तुम बच्चे हमारे हो, तुम बच्चे हमारे हो, कितना अच्छा लग रहा है सुन के, कैची वर्जन लग रहा है। ऐसे ही किसी के लिए भी कोई भी पॉइंट लगेगा, जैसे वो बहन जी ने स्लोगन बोला, उनका स्लोगन कैची लगा आज का, है ना, तो स्लोगन कैची हो गया। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो दिल को छू रहे हैं, वो पॉइंट्स को बोलेंगे कैची वर्जन मेथड। जो 84 जन्म लेते हैं उन्हीं का श्रृंगार मैं करता हूं, तो इनके लिए वो पॉइंट कैची वर्जन हो गया। हाँ, जैसे बच्चे बलि चढ़ते तो बाबा भी पूरा पूरा बलि चढ़ते, कितना अच्छा वाक्य है, कितना प्रेम है उस वाक्य में। तो कैची वर्जन्स, कौन से ऐसे कैची वर्जन्स है आज की मुरली में, वो उठाने। तो एक बार और रिवाइज करेंगे, पहला है वर्ड मेथड, है ना, शब्द विधि, शब्दों को उठाना है, बाजू में लिखना है। सेकेंड है सेंटेंस मेथड, वाक्य विधि, सेंटेंसेस को मुरली पढ़ते समय या मुरली सुनते समय लिख लेना और फिर उसको दिन भर में रिवाइज करना। थर्ड है टॉपिक मेथड, मुरली से टॉपिक्स निकालनी है, टॉपिक्स निकाल लो, जैसे कि 5 टॉपिक निकाल लिया आज, अब उस 5 टॉपिक पर चिंतन करो पूरे दिन भर। फिर टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, ड्रिल, पूरी मुरली को ड्रिल में परिवर्तन कर दो। फिर फिफ्थ है विजुअलाइजेशन मेथड, तो विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करना। फिर आंसर चर्निंग मेथड, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना और फिर उत्तर खुद निकालना, तो आंसर चर्निंग। फिर सेवेंथ है क्वेश्चन मेथड, पूरी मुरली को क्वेश्चंस निकालते जाना, 10 क्वेश्चन निकालना आज की मुरली से और फिर उसको याद करना। फिर ऑडियो मेथड, है ना, सुनना। फिर है स्टॉप इन बिटवीन मेथड, बीच बीच में रुकने की विधि, कुछ पढ़ लो, रुक जाओ, उस पर चिंतन करो, फिर आगे बढ़ो। फिर है रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ना। फिर है नेम मेथड, नाम की विधि, आज बाबा ने सत्युग के बारे में और कौन से नाम बोले, या मेरे लिए कौन से नाम बोले, या ब्रह्मा बाबा के लिए कौन से नाम बोले, संगम युग के बारे में कौन से नाम बोले, है ना, नेम मेथड। फिर है एक्सपीरियंस मेथड, अनुभव की विधि, है ना, आज ये पॉइंट से क्या अनुभव हो रहा है मुझे, मेरे जीवन में मैं ये पॉइंट कहाँ यूज करूंगी। फिर 13th है मेंटल मूवी मेथड, विजुअलाइज करना मूवी की तरह पूरे सीन को, पूरी मुरली को। फिर एग्जाम्पल मेथड, कौन से उदाहरण दिए बाबा ने, कौन से एग्जाम्पल्स दिए। फिर नेक्स्ट है सेल्फ चेकिंग मेथड, कौन से पॉइंट्स आए, अब उस पर मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ इस पे। फिर रिलेशनशिप मेथड, संबंधों में बाबा ने कौन से संबंधों से आज मुरली चलाई। फिर फोर सब्जेक्ट्स मेथड, 4 विषय विधि, ज्ञान योग धारणा सेवा, है ना। फिर स्पिरिचुअल टूर मेथड, ये भी जैसे विजुअलाइजेशन के जैसा। फिर हाईलाइट और अंडरलाइन मेथड, है ना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना और उसको फिर याद करना। तो एक्सट्रैक्टिंग न्यू धारणा पॉइंट्स, 20th पॉइंट, धारणा की कौन सी पॉइंट्स थी आज की मुरली में मेरे लिए, वो जो 2 लिखी हुई है वो तो सबके लिए, लेकिन मेरे लिए धारणा की कौन सी पॉइंट्स है। फिर 21st है मुरली पर्सनलाइजेशन मेथड, तो मुरली की कौन सी ऐसी पॉइंट है जो पर्सनली मैं यूज करूंगी। फिर है स्टोरी मेथड, कहानी कौन सी बाबा ने आज मुरली में सुनाई। फिर है कॉन्ट्रास्ट मेथड, कौन से पॉइंट्स में कॉन्ट्रास्ट किए हैं आज मुरली में बाबा ने। फिर है मेमोराइजेशन मेथड, पूरी मुरली को या पूरे पॉइंट्स को, 5 पॉइंट को या सिर्फ प्रश्न को या वरदान को मेमोराइज करना। फिर है बिजार मेथड, कहीं से भी मुरली पढ़ना चालू करो। और 26 पॉइंट है कैशी वर्जन्स मेथड। तो ये कुछ 26 पॉइंट्स हमने निकाली थी, इस हिसाब से हम मुरली को पढ़ेंगे तो मुरली पढ़ने में एक नवीनता लगेगी, मुरली पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना, बाबा का लव लेटर है वो, मुरली बाबा कहता है ना कि ये प्रेम पत्र है हमारे साजन का, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो आज आम की टोली है आप सब लोगों के लिए। तो मुरली को भी आम बोलते हैं, लेकिन ये आम ऐसा है जिसमें गुठली नहीं है और इसको छिलके के साथ खाना है, यानी कि चार पेज की जो मुरली है उसके एक भी वाक्य को, एक भी शब्द को छोड़ना नहीं, तो पूरा आम खाना है ये मुरली। ओके, कभी नहीं खत्म होने वाला। ओम शांति।